दिया हमारे बाबा, मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया।
सभी ने गीत सुना, बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया। तो सभी की दिल गाती है, सभी के दिल से आवाज आती है कि सचमुच बाबा आपने कमाल कर दिया। तो ऐसे कमाल करने वाले बाबा को क्या कहेंगे? सभी दिल से शुक्रिया कहते। चलिए, अभी तक हमने स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, परमात्मा का अवतरण, इन सब बातों के बारे में सुना। अब आज हम लेसन 5, समय की पहचान। वर्ल्ड ड्रामा व्हील, सृष्टि चक्र शुरू करेंगे। आप सभी अपनी कॉपीज में डाल लें, वर्ल्ड ड्रामा व्हील, सृष्टि चक्र, समय की पहचान। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वर्तमान समय इस सृष्टि पर कौन सा समय चल रहा है, ये सृष्टि कौन कौन से समय से गुजर कर आई है और आने वाला समय कैसा है, कल क्या होगा। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें उसके पहले आप सबको एक बात कह दें कि आज का ये जो चैप्टर है बहुत गंभीर गहराई का विषय है, समझने का विषय है, और ये समझ लिया तो जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए आप सब तरफ से अपनी मन बुद्धि को हटाकर निश्चिंत होकर एकाग्रचित स्थिति में बैठेंगे और इस स्थिति में बैठेंगे कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूं, तो आपको उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ एकदम निश्चिंत होकर इसको समझें। दूसरी बात हम बताएंगे कि इस चैप्टर के बारे में, समय की पहचान के बारे में अलग अलग जगह अलग अलग बातें मिलती हैं, पर जो बात हम आपको बताएंगे अभी, जो भी समय की पहचान देंगे, उसका आधार है कि जो स्वयं परम पिता शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से जो भी रहस्य सुनाए हैं वो आप सबके सामने रखेंगे। तो डायरेक्ट जो परमात्मा सृष्टि का रचयिता है, उसके द्वारा जो सृष्टि का ज्ञान दिया है वो आपको समझाएंगे, वो बेस है, आधार। सृष्टि के चक्र को समझने के लिए पहले हम एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल समझेंगे कि किसी भी मनुष्य के जीवन का चक्र, लाइफ साइकिल, चार अवस्थाओं में पार होता है। पहला, फर्स्ट स्टेज, बर्थ स्टेज, जन्म अवस्था, बालक का जन्म हुआ, फिर और बड़े हुए, सेकेंड स्टेज, मैच्योरिटी, ग्रोथ, कार्ड और बड़े हुए मैच्योरिटी स्टेज फोर्थ डेथ मृत्यु कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल इस तरह से चलता है जन्म हुआ युवावस्था और बड़े हुए और फिर लास्ट में डेथ। तो जब जन्म होता है बालक का तो वो एकदम इनोसेंस रहता है। व्यर्थ क्या है नेगेटिव क्या है उसको कुछ पता नहीं होता। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने आसपास की इंफॉर्मेशन आदि कलेक्ट करता है। पर हम यहां सृष्टि के चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन के चक्र में नहीं। ये समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल चार अवस्थाओं में पार होता है, ठीक उसी प्रकार ये सृष्टि का चक्र भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहली स्टेज सृष्टि की जन्म अवस्था बर्थ स्टेज या ऐसा कह लें गोल्डन एज सतयुग। कहते हैं ना कि आज से कुछ हजार साल पहले जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, राम राज्य माना ऐसा समय इस सृष्टि पर था। फिर सृष्टि और बड़ी हुई तो उसकी सेकंड स्टेज ग्रोथ स्टेज या ऐसा कहने सिल्वर एज त्रेता योग। फिर सृष्टि और बड़ी हुई थर्ड स्टेज मैच्योरिटी या द्वापर योग और फोर्थ स्टेज आयरन एज कलयुग। यहां बताया कि सबसे पहले देखिए आत्मा एकदम चमकता हीरा प्योर डायमंड वो अपने घर परम धाम में था। सब कहां पहुंच जाओ अभी अपने घर परम धाम। और देखो कैसे यात्रा हमने शुरू की। सबसे पहले हम सब आत्माएं इस सृष्टि में आने के पहले चक्र में आने के पहले पार्ट बजाने के पहले सब एकदम प्योर चमकता हीरा परम धाम अपने घर में थी। और उसके बाद हम नीचे उतरे और सबसे पहले आए सतयुग में फर्स्ट स्टेज सृष्टि की। तो यहां बताया है सतयुग त्रेता द्वापर युग और कलयुग कि ये चक्र किसी भी चक्र की विशेषता है कि वो रिपीट होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये सृष्टि का चक्र भी हर 5000 साल बाद रिपीट होता है। माना इसकी टोटल ड्यूरेशन 5000 इयर्स है और हर युग की एज इक्वल है। सतयुग 1250, त्रेता भी 1250, द्वापर भी इतना, कलयुग भी इतना। हर युग इक्वल इक्वल डिवाइडेड। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्वास्तिका है वो चार भागों में इक्वल बनाते हैं कि स्वास्तिका अर्थात स्वयं की आत्मा की स्थिति इस पूरे चक्र के अंदर क्या रही। तो अब हम एक एक युग के बारे में डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आत्मा सृष्टि के अंदर पार्ट बजाने आई कौन से युग में, सतयुग में। सृष्टि की जन्म अवस्था गोल्डन एज स्वर्णिम युग। अब सतयुग माना ही सभी कहाँ पहुंच जाओ अभी घर से परम धाम से नीचे उतरे कहाँ पर सतयुग में आज जवाब देते जाना जो पूछे ताकि हमको लगेगा कि समझ आ रही है। तो सतयुग माना सत्यता का युग अर्थात जहां पर हर चीज में सत्यता थी और सत्यता थी तो शक्ति भी थी। आज सत्यता नहीं है इसलिए शक्ति भी नहीं है। सतयुग को कहा जाता है देखिए सतयुग के कितने नाम सतयुग को कहते एज ऑफ पॉजिटिविटी सकारात्मकता का युग अर्थात वहां पर व्यर्थ संकल्प नेगेटिव क्या है लोगों को पता ही नहीं था इनोसेंस थे हर चीज पॉजिटिव दिशा में हमारे संकल्प बोल कर्म दृष्टिकोण सब चीज पॉजिटिव जैसे जन्म अवस्था में इनोसेंस होते ना तो ऐसे ही सतयुग में नेगेटिव बातों से हम इनोसेंस थे। सतयुग को कहते हैं एज ऑफ परफेक्शन अर्थात जहां पर मैं आत्मा चमकता हीरा उसकी डिग्री ऑफ परफेक्शन शक्ति प्यूरिटी 100% प्योर आत्मा चमकता हीरा 100% था उसकी चमक या ऐसा कह ले कि सतयुग के अंदर तन का सुख भी 100% मन का भी 100% धन का 100% माना हर चीज 100% परफेक्ट संबंधों का भी 100% तन का सुख 100% माना क्या कहेंगे संपूर्ण स्वस्थ निरोगी काया। आपने कभी सुना कि देवताओं को हेडेक हो गया या हाई ब्लड प्रेशर हो गया। आप सतयुग की बात तो छोड़ दो वो तो अभी बहुत पहले की बात हो गई। आज से 60-70 साल पहले ही इतनी ये बीमारियां सुनने को नहीं मिलती थी। बुजुर्ग लोग बताते हैं आपने सुना होगा कि भाई आज से ये 100-200 साल पहले भी इतना व्यक्ति में टेंशन आदि नहीं था नेचुरल सब चलता था। तो सोचो सतयुग में तो कितने मस्त होंगे। तो तन का सुख भी 100% था वहां पर हर चीज नेचुरल रिदम में चलती थी हार्ट बीट रेस्पिरेशन क्योंकि मैं आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर में स्थित थी। मन का भी 100% सुख अब मन का 100% सुख माना क्या कहेंगे कि मन की सच्ची खुशी क्या है मन की सच्ची शांति क्या है इसका लोगों को वहां अनुभव था। और आज मन की सच्ची खुशी के लिए लोग इधर उधर भटकते हैं। धन का भी 100% सुख अब धन का 100% माना गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा सतयुग में कहते हैं कि हीरे जवाहरात के महल होते थे देवताएं पुष्पक विमानों में घूमा करते थे माना अथाह धन संपत्ति घी दूध की नदियां बहती थी ये गायन है। तो घी दूध की नदी माना कोई प्रैक्टिकल में नदी नहीं थी पर ये एक संपन्नता का प्रतीक है कि ऐसा समय था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। हो सकता है आप सोचें कि बहन जी आज भी कई ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन है पर देखिए बहुत ज्यादा धन होना और धन का सुख प्राप्त होना इन दोनों में अंतर है। आज हो सकता है कि किसी किसी के पास धन बहुत है, पर धन का सुख प्राप्त नहीं है। और सतयुग में धन भी अथाह था और धन का सुख भी प्राप्त था। संबंधों का भी 100% सुख, अर्थात कि आपसी संबंधों में निस्वार्थ स्नेह मधुरता क्या है, इसका लोगों को अनुभव था। तो ऐसा सुंदर समय इस सृष्टि पर कितने समय चला बताइए? 1250, जहां पर तन मन धन संबंध प्रकृति सबका सुख 100% था। सोचो आप कैसा समय होगा जहां पर चारों ओर सृष्टि पर खुशियां ही खुशियां थी। दुख क्या है, पाप क्या है, विकार क्या है, इसका लोगों को अनुभव ही नहीं था। कई पूछते हैं कि बहन जी शुरू से ही दुख चला आ रहा है क्या, शुरू से ही ये पाप आदि है क्या? तो नहीं, आज से कुछ हजार साल पहले दुख क्या चीज है इसका लोगों को ज्ञान तक नहीं था, इनोसेंस थे। नेगेटिव क्या है पता ही नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि सतयुग के अंदर देवताएं रहते थे। देवता माना कि थे मनुष्य ही, ऊपर से नहीं टपक गए, पर उनके अंदर देवताई संस्कार थे, दिव्य गुण थे, इसलिए देवता कहलाए। और देवताओं की महिमा में गाते हैं कि सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम वो देवताएं। देवताओं की महिमा ही है 16 कला संपूर्ण। माना सतयुग में जो डिग्री थी परफेक्शन की वो 16 कला थी। 16 कला माना देखिए कोई भी बात 100% सच होती है तो हम कहते हैं ना कि ये 16 आने सच है, तो ये एक 100% का सिंबल है। और सतयुग के अंदर सारी सृष्टि पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। सोचो आप कैसा समय होगा जब सारी सृष्टि पर एक का राज्य। सतयुग में राज्य चलता था श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, और एक ही धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। और सतयुग के अंदर जो एवरेज एज थी कितने जीते थे, लगभग 150 साल, हर व्यक्ति 150 साल जीता था। और आज तो कोई 150 साल का मिल जाए तो पेपर में फोटो ही आ जाएगा, पर वहां हर व्यक्ति की एवरेज 150 थी। माना कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी क्योंकि दुख का नाम ही नहीं था। तो ऐसा सुंदर समय इस सृष्टि पर 1250 साल चला। और सतयुग के अंदर लोग भी थोड़े थे, और सतयुग में जो आत्मा के मैक्सिमम जन्म हुए, बर्थ हुए, वो 8 जन्म। कोई भी आत्मा के मैक्सिमम जन्म सतयुग के अंदर वो 8 थे। फिर आई इस सृष्टि पर सेकेंड स्टेज, सिल्वर एज, त्रेता युग। देखिए ये सीढ़ी नीचे उतरते बता रहे हैं कि हम परम धाम से उतरे, सबसे पहले पहुंचे सतयुग में, और फिर उसके बाद आए सेकेंड स्टेज में, सिल्वर एज त्रेता युग। अब सतयुग और त्रेता में केवल इतना ही अंतर है कि सतयुग में आत्मा की डिग्री परफेक्शन की 100% प्योर थी, और सतयुग में जन्म लेते लेते त्रेता में आते आते केवल 2% कम हो गई, वो रह गई 98%। माना त्रेता में तन का सुख भी 98, मन का भी इतना, माना केवल 2% कमी आई। या ऐसा कह लो कि सतयुग में 16 कला तो त्रेता में 14 कला। त्रेता युग में भी सारी सृष्टि पर एक ही धर्म और एक का ही राज्य था, श्री राम और श्री सीता। तो ऐसा सुंदर समय भी इस सृष्टि पर कितना समय चला? 1250। अर्थात सतयुग और त्रेता दोनों मिलाकर 2500 साल इस सृष्टि पर देव आत्माओं का राज्य था, देवी देवताएं रहते थे, या मनुष्य के अंदर ही दिव्य गुण देवताई संस्कार थे। 2500 साल तक इस सृष्टि के ऊपर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, चारों ओर खुशियां ही खुशियां, तन मन धन सब परफेक्ट। दुख क्या है, पाप क्या है, अशांति क्या है, इसका लोगों को अनुभव तक नहीं था। इसीलिए गीत में गाते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया थी वो भारत देश था मेरा। माना इसीलिए गाते हैं कि कभी न कभी तो वो होगा। और त्रेता युग के अंदर जो मैक्सिमम जन्म हुए आत्मा के वो 12। देखो जन्म बढ़ते जा रहे हैं, सतयुग में 8 और त्रेता में 12। और जैसे जैसे जन्म बढ़ते हैं तो आत्मा की जो परफेक्शन की डिग्री है, चमकता हीरा, वो कम होता जाता है। जन्म बढ़ते जाते हैं तो कष्ट और दुख बढ़ते जाते हैं, पर 2500 साल तक दुख अशांति इसका नाम ही नहीं था, चारों ओर खुशियां ही खुशियां। फिर हम आए जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते 3rd स्टेज में, गोल्डन पास हुई, सिल्वर हुई, 3rd आई कॉपर एज, द्वापर युग। यहां बताया सतयुग, गोल्डन, फिर त्रेता, फिर आए हम द्वापर युग, कॉपर एज। अब द्वापर माना ही, द्वापर माना दोपुर, एज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। आप ऐसा समझ लें कि सतयुग त्रेता तक तो इस वर्ल्ड ड्रामा में सब कुछ ठीक ठाक था, और द्वापर युग से इस वर्ल्ड ड्रामा में एंट्री हुई विलेन की। जैसे नहीं ड्रामा होता उसमें विलेन की एंट्री होती, तो सतयुग त्रेता तक तो ठीक ठाक चल रहा था, और द्वापर युग में विलेन के रूप में कौन आए? ये सारी बुराइयां, अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इनकी प्रवेशता हुई, ईर्ष्या, नफरत। और आज तो राज्य ही इनका है, आज की बात छोड़ो, अभी बाद में आएंगे आज पर द्वापर युग में एंट्री हुई इन बुराइयों की। और जब बुराइयों ने प्रवेश करा तो मनुष्य के अंदर हलचल मची, अशांति हुई, और कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती तब आविष्कार होता है। सतयुग त्रेता तक कोई भक्ति नहीं चलती थी, क्योंकि खुद ही पूज्य थे, महान थे, सुखी थे। और द्वापर युग में जब दुख आया, अशांति हुई, तो हम सब आत्माओं ने भक्ति करना शुरू की, भगवान को याद किया सुख शांति के लिए। और बताते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने भक्ति शुरू की उसी ज्योति स्वरूप अपने परम पिता शिव बाबा की। या बताया कि सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का बना, वही ज्योतिर्लिंग। तो सबसे पहले हम आत्माओं ने भक्ति की अपने बिंदु स्वरूप परम पिता की, और उसके बाद सब देव आत्माएं महान आत्माओं की भी हमने भक्ति की। श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, सबकी हमने पूजा शुरू की। पर कहते हैं कि उस समय भक्ति भी ठीक थी, भक्ति में भी भावना थी, और आज भक्ति में भी भगवान को ब्राइब करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, भक्ति में भी स्वार्थ आ गया। भगवान को कहते ऐसा कर दो तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, पर उस समय भक्ति भी पहले अच्छे से करते थे। तो एक तरफ भक्ति शुरू की, भगवान को याद किया सुख शांति के लिए, और दूसरी तरफ इस सृष्टि पर धर्म पिताओं का आगमन हुआ। आप देखिए कि जब परिवार में बच्चे झगड़ने लगते हैं तो डायरेक्ट पिताजी नहीं समझाते, पहले बड़े भाई को कहते हैं कि भाई आपस में सेटलमेंट कर लो। तो जब हम सृष्टि की आत्माएं लड़ने झगड़ने लगे आपस में, तो डायरेक्ट पिताजी शिव बाबा नहीं आ गए परम धाम से हमको समझाने, पहले बाबा ने हमारे बड़े भाइयों को, धर्म पिताओं को भेजा कि जाओ मेरे बच्चों को जाकर समझाओ, इन्हें सुख शांति का रास्ता दिखाओ। तो देखिए धर्म पिता के रूप में कौन कौन आए, आप देखिए कौन कौन आए हमको समझाने। चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे, को एक झाड़ के रूप में बताया, जो गीता में कहा है ना कि ये सृष्टि एक कल्प वृक्ष के समान है। तो यहाँ बताया कि सत्युग त्रेता तक तो इस झाड़ की कोई भी टाल टालियां नहीं थी, एक धर्म एक राज्य सब में एकता, और द्वापर युग से इसकी ब्रांचेस शुरू हो गई। बाद में आप चाहो तो नजदीक से ये चित्रों को देख सकते हैं। तो द्वापर युग में अनेक धर्म की स्थापना हुई, बाबा ने धर्म पिताओं को भेजा हमें सही रास्ता बताने के लिए। तो सबसे पहले आए इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, शंकराचार्य द्वारा सन्यास धर्म की स्थापना, माना अनेक धर्म की स्थापना होती गई हमें सुख शांति देने के लिए। फिर भी हमने क्या कहा, और द्वापर युग में जो एज या डिग्री ऑफ परफेक्शन थी वो 60-65% थी, अर्थात हर चीज की डिग्री ऑफ परफेक्शन, तन का सुख, मन का, धन का, सब 60-65। और द्वापर युग के अंदर जो जन्म थे मैक्सिमम वो थे एक आत्मा के 21 जन्म। देखो बढ़ते जा रहे हैं, सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं। माना आत्मा की जो डिग्री है वो कम होती जा रही है, दुख पाप विकार इनमें फंसते जा रहे हैं। तो शक्ति और जो हमारी चमक है वो सारी कम होती जा रही है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नीचे उतरते एक एक सीढ़ी। और फिर हम पहुंच गए फोर्थ स्टेज में, कहां पहुंच गए, देखो कितने अच्छे से कह रहे हैं कि जो आत्मा इतनी प्योर थी सतयुग में थी चमकता हीरा, वो जन्म लेते 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 सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पहुंच गई फोर्थ स्टेज आयरन एज कलयुग। अब कलयुग माना ही कलहे कलेश का युग, जहां पर हर घर में हर मन में क्लेशेस हैं। कलयुग में कहते हैं कि हाँ यहां पर हर व्यक्ति चिंता की चिता पर बैठा है, किसी को धन कमाने की चिंता, तो किसी को धन बचाने की चिंता। कलयुग में हम तन से भी गरीब हो गए, मन में भी शक्तियों की गरीबी आ गई और धन से भी गरीब। या कलयुग के अंदर हर कोई मांग रहा है, चारों तरफ ये दे दो का आवाज है। कोई तन का स्वास्थ्य मांग रहा है, कोई मन की खुशी मांग रहा है, कोई अच्छे संबंध मांग रहा है, और यहाँ तक कि लोग जीवन भी मांग रहे हैं अच्छा। तो कलयुग के अंदर जो आत्मा की डिग्री ऑफ परफेक्शन लिखूं, प्यूरिटी, वो कितनी लिखूं? कितना रह गया तन का सुख मन का? कितना? हाँ, कितना रह गया? 10। अच्छा चलो, आपको खुश करने के लिए 10% लिख देते हैं, बाकी तो 0 ही रह गया। 0 माना एकदम डाउन, कम। जो हाई था वो एकदम लो हो गया। तन का सुख भी 0, मन का भी 0, धन का भी 0। 0 माना एकदम कम लेवल। आप देखिए कि तन का सुख कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बीमारी नहीं पड़ा आज तक। और ही आप छोड़ो कि कलयुग के अंदर तो औरियां सुनने को मिलती है जो आज तक नहीं सुनी। और ही कहते हैं कि भाई कितने बड़े हॉस्पिटल में बाईपास कराया, ये हालत हो गई। तो तन का सुख भी 0, मन का भी 0, कि आज मन की सच्ची खुशी के लिए, मन की सच्ची शांति के लिए देखो कहां कहां भटकते। क्या गाते हैं कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आज छोटे छोटे बच्चों को आप देख लो, 5 साल 6 साल, इतना ज्ञान नहीं, फिर भी कहता है बहन जी बहुत डिप्रेशन है। पहले तो पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या, पर छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन की टेबलेट्स लेके घूमते हैं। ये हालत हो गई अभी। धन का भी 0। आप कहेंगे बहन जी किसी किसी के पास तो बहुत धन है, पर बताए ना कि धन होना और धन सुख होना दोनों में अंतर है। संबंधों का 0, 0 माना एकदम डाउन लेवल, कम। संबंधों की हालत तो और ही बिगड़ गई। आज दूर के संबंधों में प्यार तो छोड़ो, आपस में जो नजदीक के संबंध है, घर में पुत्र और पिता की नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, और दूर की तो आप छोड़ो। तो आपसी संबंधों में जो एक प्यार, स्नेह, मधुरता होनी चाहिए वो कहाँ है? हर प्रकार की टेबलेट्स निकल गई। संबंधों को कैसे मधुर बनाए, लाइफ स्टाइल कैसे पॉजिटिव करें, उसकी भी दवाइयां निकल गई। तो इतना एडवांस हो गया, लोग सोचते एडवांस हो रहे हम साइंस में प्रोग्रेस की, पर इसकी गहराई में जाओ कि आखिर रीजन क्या है। हर चीज की दवाई खुश रहने की दवाई, क्योंकि मन की खुशी गुम हो गई। पहले यूं ही हंस लेते थे हम लोग। तो कलयुग के अंदर तन का भी 0, मन का, धन सब 0। और कलयुग के अंदर धर्म की अगर बात करें तो अनेक धर्म हो गए। राज्य की क्या हालत है इस पर तो अगर नई चर्चा करें तो ही ठीक है। और कलयुग के अंदर जो एवरेज एज ह्यूमन बीइंग की कितनी लिखूं? हा? चलो आप कहते हो तो खुश करने के लिए 40-45 लिख देते हैं, बाकी कोई भरोसा नहीं। कहा है सर्टेनिटी? आजकल सुनते ना कि जन्म लिया और चले गए, तो सर्टेनिटी नहीं है। आज आदमी के पास सब तरफ अनसर्टेनिटी है। तो देखिए कि जो आत्मा इतनी महान थी, प्योर देव आत्मा के रूप में, वो आत्माएं जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पहुंच गई 4th स्टेज कलयुग के अंदर। और कलयुग में जो मैक्सिमम बर्थ होते हैं वो 42। देखो बढ़ते जा रहे हैं जन्म, और जन्म बढ़ते माना दुख बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, शक्ति कम होती जाती है। तो क्या हुआ कि जब शिव बाबा ने देखा कि जो मेरे बच्चे इतने सुखी थे, सतयुग में रहते थे, सुख शांति से भरपूर थे, वो जन्म लेते लेते दुख में आ रहे हैं, झगड़ने लगे, अशांति आई, तो बाबा ने एक एक करके सब धर्म पिताओं को भेजा, हमारे बड़े भाइयों को, कि जाओ बच्चों को जाकर कुछ समझाओ। पर जब हम किसी से नहीं समझे, किसी से नहीं सुधरे, तो आखिर हम आत्माओं की पुकार सुनकर हमारे परम पिता शिव बाबा को ही परम धाम से आना पड़ा, हमें सुख शांति देने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए। तो क्या समझाया था कल आपको कि शिव बाबा कब आए? कब आए? 1936। और किसके तन में प्रवेश किया? एक साधारण मनुष्य के तन के अंदर। तो ये खुशखबरी आपको सुनाते, अब आप सभी ध्यान से सुने, बहुत इम्पोर्टेंट बातें चलेंगी। ये खुशखबरी हम आपको सुनाते कि आज तक सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरे ही चक्र के अंदर इस सृष्टि पर कई महान आत्माएं आई, देव आत्माएं आई, कई अवतार हुए, पर अब आया है इस सृष्टि पर स्वयं परम पिता परमात्मा। ये खुशखबरी आपको हम सुनाते कि हम सभी आत्माओं का जो बाबा है, जिसकी महिमा में हम गाते हैं कि जो प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर है, वो वर्तमान समय इस सृष्टि पर आए हुए हैं। परमात्मा का अवतरण हो चुका है। आप सोचिए कि भगवान से मिलने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कितने समय से भक्ति कर रहे थे, द्वापर युग से याद कर रहे थे, कितनी साधनाएं की हैं, कितने तीर्थ आदि गए, कितने व्रत उपास किए, क्या क्या नहीं किया। तो उन सब जन्म जन्म की भक्ति का फल देने, अपनी साधनाओं का फल देने, अब स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं। क्यों आए बाबा? आपको सुनाया ना कि गाते ना कि दुख हरता सुख करता, तो सब आत्माओं के जन्म जन्म के दुख हरकर सुख देने के लिए, या जन्म जन्म की भक्ति का फल देने बाबा आए हैं। बाबा आए हैं इस कलयुग रूपी रात को बदल सतयुग रूपी दिन लाने, क्योंकि आपको बताया कि ये वर्ल्ड ड्रामा रिपीट होगा, तो लॉजिकली कलयुग के बाद क्या आना चाहिए? सतयुग। तो युग बदल जाना, घोर रात दिन बन जाना, कलयुग सतयुग बन जाना, ये काम कोई भी मनुष्य आत्मा के बस की बात नहीं है। युग का परिवर्तन करना, चक्र को ही बदल देना, ये काम केवल इस सृष्टि चक्र का रचयिता परम पिता परमात्मा ही कर सकता है। तो बाबा आए हैं जन्म जन्म की भक्ति का फल देने और इस कलयुग रूपी रात को बदल सतयुग रूपी दिन लाने। इसीलिए सुनाया कि कई महान आत्माएं, धर्म आत्माएं, देव आत्माएं, कई अवतार हुए आज तक, पर अब आया है युग को परिवर्तन करने, विश्व को परिवर्तन करने, इस विश्व का नियंता जन्म जन्म की पुकार सुनकर स्वयं परम पिता परमात्मा। तो कई पूछते हैं कि बहन जी आने वाला समय कैसा है, कल क्या होगा? तो हम कहते कि आने वाला समय इस सृष्टि पर बहुत बहुत अच्छा होगा। वापस इस सृष्टि पर वही सुखमय संसार, वही खुशियों भरी दुनिया, वही सतयुगी दुनिया आने वाली है और इसीलिए परमात्मा आए हैं। पर वो सतयुग की दुनिया आने के पहले क्या होगा? इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश। आपको बताया था ना कल लेसन में कि बाबा को, ब्रह्मा बाबा को पहले क्या साक्षात्कार हुआ? पुरानी दुनिया का विनाश और फिर नई दुनिया की स्थापना। पर आने वाला समय बहुत खुशियों भरा, वापस इस सृष्टि पर वही 2500 साल तक के लिए खुशियों भरी दुनिया, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, जहाँ खुशियां ही खुशियां, दुख, पाप, विकार, इनका नाम ही नहीं, वही दुनिया आने वाली है और इसीलिए बाबा आए हैं। तो क्या आप सब उस खुशियों भरी सतयुगी संसार में चलना चाहते? कौन कौन जाना चाहते? हाथ उठाओ तो उतनी टिकट बुक करा दें। अब तो सभी हाथ उठा देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ की बड़ी बोगी बनानी पड़ेगी। कौन नहीं चाहेगा? सतयुग की दुनिया में जाना माना 2500 साल के लिए दुख अशांति से छूट जाना और सुखमय जीवन व्यतीत करना, तो कौन नहीं चाहेगा? पर उस दुनिया में जाने के लिए क्या करना, ये मुख्य बात। नहीं तो बाबा ऐसी अगर हमको सतयुग में भेज दे तो हम तो वहां भी लड़ने झगड़ने लगेंगे, क्योंकि संस्कार तो वही है। तो बाबा कहेगा कहाँ भेज दिया इनको, तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। तो ये आपने चलो अच्छा हाथ उठाया कि वहां जाना है, जाना ही चाहिए। क्योंकि आप देखो वैसे भी कि किसी के माता पिता मानो फॉरेन गए हो विदेश और बहुत समय बाद आए, तो खाली आप थोड़ी आते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते हैं। तो हमारा परम पिता शिव बाबा जो इतने समय बाद इस सृष्टि पर आए हैं, तो खाली आप थोड़ी आए, हम आत्माओं रूपी बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट तो लाएंगे ना। तो बाबा हम सब आत्माओं के लिए सतयुग की दुनिया की गिफ्ट लाए हैं। तो वो गिफ्ट लेना, या ऐसा कह लो कि हमारा बाबा सतयुग की स्थापना कर रहा है, तो हम उसके बच्चे हैं, तो उसके बच्चे होने के नाते सतयुग का वर्षा या उस दुनिया में जाने का वर्षा हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लेना ही चाहिए बाबा से वो गिफ्ट। पर कैसे ले? तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करके वापस वैसा ही बनना पड़ेगा जैसे हम थे, अर्थात मनुष्य से देवता, या जो आत्मा इतनी काली हो गई है उसको वापस वैसा ही हीरा, चमकता प्योर डायमंड बनना पड़ेगा जैसे हम थे। अब कैसे बने आत्मा चमकता हीरा, उसके लिए कौन सा साबुन लाए बाबा? तो वो आपको अभी बताते कि कैसे बने। पर सबसे पहले ये खुशखबरी सुनाते कि वर्तमान समय इस सृष्टि पर कौन सा समय चल रहा है। वर्तमान समय इस सृष्टि पर चल रहा है कलयुग का एंड और सतयुग का बिगनिंग। माना स्वयं परमात्मा कर उस सतयुगी संसार की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जो कान अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना। तो दोनों के बीच के युग को कहते हैं कलयुग का एंड और सतयुग का बिगनिंग। तो दोनों के बीच के पीरियड को कहते हैं संगम युग, दोनों युग का संगम, कॉन्फ्लुएंस एज। और संगम युग को कहते हैं हीरे तुल्य युग। सतयुग को कहा गोल्डन एज, त्रेता को कहा सिल्वर, द्वापर को कहा कॉपर, कलयुग को कहा आयरन, संगम को कहा हीरे तुल्य युग डायमंड एज, क्योंकि इस युग के अंदर स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं, इसलिए इसको कहा हीरे तुल्य युग। तो आप सब आत्माओं ने जिन्होंने बाबा का परिचय लिया, बाबा के घर में जन्म लिया, तो आप सब आत्माओं के लिए कौन सा युग शुरू हो गया? जिन्हें ये पहचान मिली तो आप सबका ईश्वरीय युग में या संगम युग में प्रवेश हो गया। इसीलिए कहा न कि कल पुराने जीवन की समाप्ति, अब आपको ईश्वर की गोद मिली, समय की पहचान मिली, तो आपके लिए शुरू हो गया हीरे तुल्य युग संगम युग। सब कौन से युग में प्रवेश कर गए? पक्का भूलना नहीं, अब ऐसा नहीं कहना। तो आज तक दुख था, चिंता थी, पर अब हम आ गए प्रभु की शीतल छत्र छाया में ना, इसीलिए दुख के दिन हमारे अब पूरे हुए। जिनको परिचय मिला तो आप सबके लिए अब नया जन्म जो हुआ तो युग बदल गया, सबने प्रवेश कर लिया संगम युग में। तो वर्तमान समय जिन्होंने पहचान लिया उनके लिए संगम युग और बाकी के लिए कलयुग चल रहा है, ठीक है ना? तो वर्तमान समय ये खुशखबरी आपको हम सुनाते कि परमात्मा के मिलन मनाने का युग चल रहा है। जन्म जन्म हम आत्माओं ने परमात्मा से मिलने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं की, पर अब जन्म जन्म की पुकार सुनकर साधनाओं का फल देने स्वयं परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। तो इस समय आप चाहें तो डायरेक्ट परमात्मा से मिलन मना सकते हैं। वर्तमान समय इस सृष्टि पर डायरेक्ट परमात्मा, जिसे ज्ञान का सागर कहते हैं, वो सत्य ज्ञान सुना रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट परमात्मा से सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जन्म जन्म की जो खोज है सत्य की वो पूरी कर सकते हैं। वर्तमान समय इस सृष्टि पर जो हम कहते ना कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तो डायरेक्ट परमात्मा मात पिता बनकर हम सब आत्माओं की पालना कर रहे हैं। आप भगवान से मात पिता बंधु सखा इन सब संबंधों की पालना ले सकते हैं। या शॉर्ट में इतना कहें कि अभी तक सारे ही जन्मों में सब कुछ मनुष्यों से प्राप्त किया, गुरु महात्माओं से प्राप्त किया, जो भी चाहिए था वरदान शक्तियां स्नेह ज्ञान सब इनडायरेक्ट लिया, पर अब डायरेक्ट परमात्मा से प्राप्ति का समय चल रहा है। जो भी आपको चाहिए वरदान शक्तियां ज्ञान सब कुछ, क्योंकि ये परमात्मा के अवतरण का युग चल रहा है। कैसे प्राप्त करें वो हम आपको आगे अभी बताते जाते हैं, पर डायरेक्ट परमात्मा से प्राप्त करने का युग चल रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने मुख्य विषय पर। कई हमसे कल मिले, कह रहे थे बहन जी आज शिविर पूरा हुआ, तो हम कहते भाई आज शिविर नहीं पूरा हुआ, पर आज से तो आपको इस नए ईश्वरीय जीवन का नया लक्ष्य मिला कि मनुष्य से देवता बनना, ये नए जीवन का हमारा लक्ष्य है। तो आज समापन है, पर किस चीज का समापन? दुख की चिंताओं की समाप्ति, पर आज से तो एक नए जीवन की शुरुआत है। 11 दिन मथने के बाद मक्खन निकला कि मनुष्य से देवता बनना या वापस वैसी प्योर चमकता डायमंड बन जाना जैसे हम थे। थे। अब हम आपको बताते कि वैसा बनने के लिए बाबा कौन सा साबुन लाए, कैसे बने वैसा प्योर डायमंड, क्योंकि आत्मा जन्म लेते 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 कितनी काली हो गई। तो उसके लिए बाबा दो चीज बताते कि बच्चे वापस वैसे महान शक्तिशाली बनने के लिए दो बातें। पहला, एक तो बाबा परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं मुरली, तो रोज मुरली सुनो। अभी ये नटशेल चल रहा है पूरा। तो मुरली सुनने से हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाते हैं, क्योंकि सारा खेल संस्कार बदलने का है। संस्कार दिव्य बन जाएंगे तो हम देवता बन जाएंगे। तो एक तो ज्ञान सुनो मुरली, और दूसरा बाबा कहते मुझे याद करो, मुरली प्लस मेडिटेशन। जब योग बाबा से लगाते तो आत्मा के अंदर शक्ति भरती जाती है, और जन्म जन्म के जो पाप कर्म हैं वो आत्मा के खत्म होते जाते हैं। देखिए, सब कहते हैं दुख बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा, तो ये सब क्यों हुआ? कि अनेक जन्म के पाप कर्म की मैल आत्मा पर चढ़ी हुई है, तो पाप कर्मों के कारण व्यक्ति को दुख मिलता है। अब उसको खत्म करने का, पाप को खत्म करने का, विकर्म को खत्म करने का बाबा ने उपाय बताया कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ बाबा को याद करो। तो बाबा जो सर्वशक्तिवान है उसको याद करने से हमारी आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती जाती है, पाप खत्म होते जाते हैं, और धीरे धीरे आत्मा याद करते करते वापस वैसे प्योर चमकता डायमंड बन जाएगी जैसे हम थे। तो कई भाई बहनों ने पूछा था, बहन जी आगे की लाइफ स्टाइल क्या, कि अभी देखो कईयों में परिवर्तन आया, किसी में 10%, किसी में 20, किसी में 40, अलग अलग, पर अब ये परिवर्तन स्थायी बन जाए, जड़ों तक आपका परिवर्तन हो जाए, तो उसके लिए आपकी कल से लाइफ स्टाइल क्या रहेगी? देखिए, वैसे तो रोज ही मुरली सुने बहुत अच्छा, हमारे यहाँ 30-30 साल हो गए भाई बहनों को आते, पर फिर भी आप सबके लिए एक स्पेशल 15 डेज का एडवांस कोर्स है मुरली का। 15 डेज मुरली का स्पेशल कोर्स चलेगा, और क्या मुरली है, उसका क्या महत्व, वो सब अभी हम आपको बताते हैं। बताए ना, अभी सारा मक्खन हम बताएंगे, इसलिए फुल कंसंट्रेशन से सुनना। पर कल से आपका ऐसा रहेगा कि अभी तक तो 1.5 घंटा था, कल से 1 घंटा समय रहेगा मुरली का। तो 1 घंटे में 1.25 घंटा आपको मुरली सुनाई जाएगी और 15 मिनट आपको मेडिटेशन कराया जाएगा। ये लाइफ स्टाइल रहेगी, ज्ञान और योग। तो कहाँ चलेगी, क्या समय, वो हमने कल बताया था और आज रिपीट करेंगे। पर उसके पहले मुरली सुनना जीवन में क्यों जरूरी, कैसे मुरली से तन भी अच्छा, मन भी अच्छा, मुरली का क्या महत्व, वो सब आपको बताते। आप ये तो समझ ही गए कि मुरली माना डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य। मुरली माना ऐसा नहीं कोई सोचे कल से कोई संगीत बजेगा क्या यहाँ पर, तो कईयों ने बोला बहन जी आप हमको उसकी कैसेट दे दो, कल आए थे कहीं सेंटर पर, अलग अलग बात होती ना, था आपको बता रहे। तो मुरली माना जो परमात्मा ने महावाक्य सुनाए, उनको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं मुरली। अब मुरली है आत्मा का भोजन। आप देखिए गहराई से समझो इसको, कि जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, और जैसा भोजन आप इसको दोगे वैसा शरीर रहेगा। अच्छा भोजन, फ्रूट्स आदि खिलाओगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो आत्मा का भोजन है संकल्प। जैसे संकल्प विचार आप इसको देंगे वैसी आत्मा रहेगी। कोई रोज इसको नेगेटिव विचार वाला भोजन दे, रोज नेगेटिव सोचे तो उसकी आत्मा की हेल्थ कैसी हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, खुशी गुम। रोज कोई अच्छा अच्छा सोचे तो आत्मा खुश हो जाएगी, हेल्थ हो जाएगी। पर लोगों के पास वर्तमान समय समस्या है कि बहन जी हम पॉजिटिव क्या सोचे। तो मुरली हमने आपको कहा था कि लास्ट डे हम आपको पॉजिटिव विचार की खान देंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हम क्या सोचें। तो मुरली के अंदर पॉजिटिव नहीं, पर पॉजिटिव से भी ऊंचा महान विचार आपको मिलेंगे। देखिए अभी तो एक ही स्पिरिचुअल इंजेक्शन देते थे और आत्मा में कितनी शक्ति भर जाती थी, तो मुरली तो सारे स्पिरिचुअल इंजेक्शन है। आप खुद फील करेंगे ये जब सुनेंगे ना। देखो हम कितना भी कहें गुलाब जामुन बहुत मीठा है बहुत मीठा है, पर जब तक खुद अंदर जाके टेस्ट नहीं होगा तो आपको कैसे लगेगा कितना मीठा। तो जब तक आप मुरली सुनेंगे नहीं तो वो क्या चीज है उसका अनुभव नहीं होगा। आप खुद फील करेंगे कि मुरली का एक एक महावाक्य आत्मा के जन्म जन्म की थकान मिटा देगा। आत्मा पर कैसा भी बोझ हो पल भर में समाप्त। मुरली आत्मा को अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति कराएगी। कल हम आपको सुनाएंगे भी, कल सबका मुरली का क्लास यहीं पर चलेगा। पर मुरली का एक एक शब्द जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल इंजेक्शन, तो मुरली पॉजिटिव विचारों की खान है, खुराक। या हमने आपको एक दिन सेशन लिया था, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुरली से तन और मन दोनों का स्वास्थ्य कैसे ठीक होता, कैसे मुरली सुनने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, जितनी भी बीमारियां हैं, तनाव आदि, ये सब कैसे ठीक। हमने आपको जिस दिन मेडिटेशन का सेशन लिया था उस दिन बताया था, आज और गहराई में बताते कि मुरली तंदुरुस्त और मंदुरुस्त, मन भी अच्छा, मन भी दुरुस्त और तन भी दुरुस्त कैसे बनाती। अब आप समझो, देखो सारी बीमारियों की जड़, मोस्टली 80% बीमारियां मन के नकारात्मक विचारों के कारण आती है। आपको बताया था उस दिन कि एक एक नेगेटिव विचार, एक नेगेटिव विचार किया तो उसके कारण कितने सेल्स पर इफेक्ट होता है, 100 बिलियन ट्रिलियंस, बताया था ना। तो एक नेगेटिव विचार किया तो उसके कारण पूरी बॉडी में नेगेटिव केमिकल्स बने और उसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ता है, या तो डायबिटीज होगी या फिर ब्लड प्रेशर आई या बताए ना आर्टरी स्ट्रोक। अलग अलग विचारों से अलग अलग बीमारियां, इतना डिटेल हम नहीं जाएंगे, पर नटशेल में कहते कि नेगेटिव विचार करने से नकारात्मक केमिकल्स बॉडी में बनते और उसके कारण नकारात्मक हार्मोन्स भी इम्बेलेंस हो गए, कई हार्मोन ज्यादा कई कम, तो उसके कारण बीमारियां हुई। जड़ है नेगेटिव संकल्प। अब उन संकल्प को हटाना, तो जब आप मुरली सुनेंगे तो मुरली के अंदर, देखो मुरली से कैसे स्वास्थ्य ठीक होगा, मुरली के अंदर आपको पॉजिटिव विचार मिलते जाएंगे। कुछ विचार मुरली के ऐसे होंगे जिनसे आपको सुनते ही खुशी हो जाएगी। चलिए आप सबने हाथ उठाया कि गिफ्ट लेनी है, तो उस दुनिया की गिफ्ट लेने के लिए पासपोर्ट तो मिलना चाहिए ना। तो मुरली सुनेंगे तब आपके संस्कार परिवर्तन होंगे। कई भाई बहनों ने यह भी कहा कि बहन जी हमको मालूम है कि आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर हमारे अंदर परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। तो परिवर्तन करने की शक्ति मुरली देगी। कोर्स हुआ पर फोर्स मुरली भरेगी। आप खुद देखेंगे कि कई संस्कार आपके मुरली सुनते सुनते बदलते जाएंगे। तो मुरली से तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, और केवल इतना ही नहीं, पर मुरली के द्वारा खुशी का खजाना, आनंद का खजाना, शांति का खजाना आपको अनुभव होगा। लाइफ के अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और यही तो व्यक्ति को चाहिए, आज और क्या चाहिए। किसी से भी पूछो तो सुख शांति प्रेम आनंद तो ये सब आपको मुरली देगी। और सत्य ज्ञान, बहुत सी बातें इतना एकदम नहीं आपको विस्तार बता सकते, कल हम मुरली सुनाने के साथ और आपको बताएंगे। पर नटशेल में यही बात कहते घूम फिर कर कि मुरली है, जैसे आजकल नहीं कहते कि 100 तालों की एक चाबी बनती ना आजकल, तो सारी चीज की एक चाबी है कि जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया उसको सुनो और उससे आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो मुरली है हीरा, अर्थात मुरली सुनने से आपका जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। कोई आपको कहे कि हम आपको हीरा देते तो आप लोगे ना? तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए 10-11 दिन आप सबने बहुत प्यार से उमंग से जल्दी जल्दी सुबह उठकर ये कोर्स अटेंड किया, तो 10-15 दिन आप मुरली भी सुनो उतने ही प्यार से। 10 दिन बाद आप डिसीजन लेना कि मुझे अपने आगे के जीवन को कैसा सेट करना है। 10 दिन पहले कोई डिसीजन नहीं, आप खुद अनुभव करेंगे कि इन 10 दिनों के अंदर आपकी लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, जीवन को एक नई रोशनी मिल जाएगी। इसलिए आप सबके कल्याण के लिए हम कह रहे हैं कि अभी हम आपको इतना नहीं बता सकते, कहा ना जब तक वो खुद नहीं टेस्ट करेंगे, पर आप खुद अनुभव करेंगे कि मुरली सुनने से जीवन को एक नई रोशनी मिलेगी और आप उड़ने लगोगे एकदम। अभी चल रहे थे, अभी किसी को चलना भी नहीं आता था, अभी दौड़ना सीखा, फिर मुरली सुनकर आप उड़ोगे। तो 10 दिन तक आप सुनो बिना अपनी बुद्धि चलाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए माना कि देखो कभी कभी होता है कि हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज आता है ना, सकारात्मक परिवर्तन, तो लोग कहने लगते हैं। हमको एक भाई ने सुनाया हंसी की बात, ये इंदौर की बात है, हम आपको सुनाते हैं कि एक भाई हमारे पास आए, देखो लोगों की आदत। तो उन्होंने सुनाया, बहन जी पहले मेरे में बहुत बुरी आदतें थी, पहले उनकी वाइफ ही हमारे पास उनको लेकर आई कि बहन जी ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और बोले ऐसी आदतें हैं कि रात को घर भी देरी से आते हैं तो हम सब परेशान हो जाते हैं, ऐसी ऐसी आदतें हैं। तो और थे रिच, काफी पैसा, तो उनकी वाइफ ने हमको कहा कि आप कुछ कर सको तो करो, ये इनकी ड्रिंक आदि छुड़ाओ। तो हमने कहा ठीक है आप इनको भेजना सेंटर पे। तो उन भाई के अंदर 6 महीने लगे उनको, क्योंकि संस्कार इतने कड़े थे, तो मुरली सुनकर 6 महीने में धीरे 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 वो एकदम परिवर्तन हो गए, जीवन में चेंज, सुबह जल्दी उठने लगे, बाबा को याद करते, सब छोड़ दिया नॉनवेज ड्रिंक आदि। तो उन्होंने हमको हंसी की बात सुनाई, बोले बहन जी पहले भी मेरी वाइफ परेशान थी, बोले देखो लोगों का तो काम ही कहना, बोले मैं पहले बुरा था, ये सब ड्रिंक आदि करता था तब भी परेशान थी, और बोले अब रोज सुबह जल्दी उठ के आ जाता हूँ तो बोले कहाँ चले जाते रोज रोज, तो लोगों का तो काम ही कहना है। आप अच्छा परिवर्तन करोगे तो भी लोग कहेंगे, पर लोग क्या कहेंगे ये आपको नहीं सोचना। ज्ञान आपको मिला, बाबा की पहचान आपको मिली, भगवान ने आपको सिलेक्ट किया, समय की पहचान आपको मिली, तो आपका विवेक क्या कहता है वो आप करना। तो हम तो यही कहते हैं कि ये कोर्स जड़ों में तभी परिवर्तन लाएगा, इसका फुल बेनिफिट तभी मिलेगा जब कम से कम 10-15 दिन आप मुरली सुनो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे सेट करना, फिर डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। पर अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना, हमारे कहने से ही सुन दो, ठीक है ना, कि 10 दिन आप इसको प्यार से निश्चय से सुनो। कैसे सुनना, क्या करना वो कल हम विधि बताएंगे, पर अब हम आपको बताते हैं कि मुरली का समय क्या रहेगा और कहां कहां मुरली चलेगी। पर कल तो हम आप सबका 1.5 घंटा ही लेंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि लास्ट डे हम आपको अलग अलग बातों का अलग अलग स्पिरिचुअल इंजेक्शन देंगे, बताया था ना, खुशी के लिए अलग स्पिरिचुअल इंजेक्शन और आनंद के लिए अलग स्पिरिचुअल इंजेक्शन, भय दूर करना है तो अलग। तो मुरली सुनाने के साथ साथ कल हम मुरली भी सुनाएंगे आपको बाबा की, और अलग अलग बातों का अलग अलग स्पिरिचुअल इंजेक्शन। जिसको 6 से 7 अच्छा लगे, सुबह सुनोगे तो बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि सुबह के समय आपको बताया था उस दिन कि कितने अच्छे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में, तो वो आपको परमानेंट छप जाएगा। पर कई ऐसे हैं जिनकी ड्यूटीज हैं, जॉब आदि ऐसा है कि सुबह नहीं आ सकते चाहते हुए भी, तो भले शाम को आ पाओ। तो पहले हम हाथ उठवाना चाहते हैं, 3 समय रखा है, एक सुबह 6 से 7, या किसी को सुबह का समय नहीं सूट होता तो शाम को 7:30 से 8:30। तो ये तो पूरी क्लास माना सत्युग के अंदर हाई पोस्ट पालेगी, तो मॉर्निंग में ही आना चाहते हैं ज्यादातर, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो आप सबका स्वागत है। और आज आप सब बाबा के लिए पत्र भी लिखकर, कईयों ने तो डाल दिए थे वहीं, कई नहीं दूर दूर से आते हैं तो उन्होंने कहा था बेंजी यही डालेंगे, तो ये बॉक्स रखा है आप सब डालेंगे। पर अब हम एक उत्सव मनाएंगे, स्वयं पर स्वयं की महाविजय का उत्सव। कैसे मनाएंगे वो सब आपको बताते, अब क्या कार्यक्रम चलेगा यहाँ पर, कि आज आप सबका नए युग में प्रवेश हो गया। कौन से युग में आ गए साहब, सब बोलो कौन से युग में आ गए। तो तनाव अलविदा, ठीक है, परिवर्तन, सब हाथ ही लाओ जिसने परिवर्तन कर दिया, ऐसे नहीं उठाना, ठीक है, बहुत अच्छा। दुख की समाप्ति हो गई, परिवर्तन हो गए। अब हम 2 उत्सव मनाएंगे, एक रहेगा स्वयं पर स्वयं की महाविजय, अर्थात आज युग बदला, परमात्मा की शक्ति मिली, तो हम आत्मा स्वयं पर स्वयं की महाविजय के रूप में मनाएंगे। और दूसरा यहाँ यज्ञ चलेगा। तो पहले तो क्या रहेगा, 2 भाग में चलेगा, हम आपको बताते क्या होगा। अभी हम सब खड़े होंगे, हम आपको बताते कैसा चलेगा पूरा कार्यक्रम, और सबने वो गीत सुनाए, हम होंगे कामयाब एक दिन, सुनाए आप सभी ने। जिन्होंने नहीं सुना तो अभी बजा देंगे, वो गीत बजेगा, वो गीत जब तक बजेगा आप सबकी कैंडल्स जल जाएंगी, आप एक दूसरे से एक से जला लेना। फिर सब कैंडल हाथ में लेकर हम सब मिलकर दिल से जोर से आवाज से बहुत स्नेह से वो गीत गाएंगे कि हम होंगे कामयाब एक दिन। इतना प्यार से गाना, सबके अंदर की आवाज निकलनी चाहिए, एक एक की आवाज बाबा तक पहुंचनी चाहिए, परमधाम तक, ठीक है ना। इसलिए धीरे धीरे नहीं गाना। और जब वो गीत होगा, जब आप सब खड़े होंगे, तब हम आपको एक प्रतिज्ञा कराएंगे कि केवल गीत नहीं गाना कि मोमबत्ती हाथ में ले ली गीत गा दिया। उस समय आपको मेडिटेशन का एक विजन बताएंगे, वो करना है। उसके बाद यहाँ यज्ञ चलेगा। तो यज्ञ में क्या करना, ये जो आपके सारे पत्र है इसको तो हम स्वाहा करेंगे ही, पर आप सब अपनी अपनी कॉपीज में से एक छोटा सा पेपर निकालना। इस यज्ञ के अंदर आज के दिन आपको नए जन्म पर क्या कमी छोड़नी है, किसी में कोई व्यसन हो, कमजोरी हो, बुराई हो, जो भी कमजोर संस्कार हो वो आप अपनी चिट्ठी पर लिख लेना। और आप सभी यहाँ एक एक करके आएंगे और बड़ी दीदी से प्रसाद लेकर फिर जाएंगे, कल हम बाबा की मुरली आपको सुनाएंगे।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान, दुखहर्ता सुखकर्ता, परम पवित्र शिव बाबा की अति प्रिय संतान, प्रिय आत्मन, भाइयों तथा बहनों, आज के इस सुंदर या स्वर्णिम प्रभात में, जबकि मैसाना नगर के धर्म प्रेमी जनता कहूं या आध्यात्म प्रेमी आत्माएं, जिन्होंने सचमुच इन 11 दिनों के अंदर 1 और 1 2 कहा जाता है, परंतु आप सब ने 1 और 1 2 की जगह 11 किया, माना इतनी शक्ति का अपने जीवन में अनुभव किया, और उस शक्ति का अनुभव ये 11 दिन के रिजल्ट आज आप सब के चेहरे बता रहे हैं। और आपकी इसकी खुशी को देखकर आप सबसे ज्यादा खुशी मुझे आत्मा को हो रही है कि सचमुच आपने उस परम पवित्र प्रभु को पहचाना, और पहचान करके 11 दिन में जो इतना जन्मों के या इस जीवन के हमारे इतने कड़े संस्कार उन संस्कारों से मुक्त होने का अनुभव भी कर रहे हैं और उस अनुभव को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो आज की इस स्वर्णिम प्रभात में सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त करते हुए आप अपने जीवन में संतोष, शांति, प्रेम, पवित्रता का अनुभव करेंगे। और सचमुच हमारी पूनम बहन ने, जिन्होंने आप सब के लिए न केवल वाणी के द्वारा आपको दिव्य संदेश दिया है, लेकिन निरंतर मनसा के द्वारा भी आपको इन्होंने वाइब्रेशंस दिए हैं कि ये जो भी आत्माएं यहाँ समय निकाल कर आ रही हैं, इनका समय सफल हो, तनाव से मुक्त हो, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन या डायबिटीज, जो भी रोग हो, उन सभी रोगों से इन आत्माओं को मुक्ति मिले। इन्होंने अपना मन, वचन, संकल्प सब कुछ आपकी सेवा में लगाया। इतने दूर से यहाँ आकर के आप सभी को सुंदर मार्गदर्शन दिया और इस बात की पूनम बहन को भी खुशी है कि आप सब ने उनके मार्गदर्शन को जीवन में अपना करके एक सच्चे आनंद की प्राप्ति की है। आनंद महोत्सव भी मना लिया, अलौकिक जन्म दिवस भी मना लिया और आज हम सब जो दिवस मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, उसकी विधि भी आपने बताई। मेरी अंतर की आप सब के प्रति खूब खूब शुभ भावनाएं, मंगल कामनाएं हैं और एक यही आशा है कि न केवल 11 दिन आप सभी ने हाथ ऊंचे किए हैं, आप सेवा केंद्र पर आकर जिन्होंने एक बात अच्छी बताई कि केवल 10 दिन के लिए आप डिसीजन नहीं लीजिए, 10 दिन आप हमारे ऊपर और छोड़ दीजिए। बाबा की मुरली एक ऐसी औषधि है जो व्यक्ति के जीवन में शक्ति और स्फूर्ति का संचार करती है। इस विद्यालय की प्रगति का आधार भी बाबा की मुरली ही है। तो 10 दिन जिस प्रकार से अभी तक आए हैं, इसी रीति से आप समय निकाल करके मुरली का अध्ययन अवश्य करेंगे और उसके द्वारा एक अलौकिक अनोखी स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। उसके लिए मैं फिर से आपको निमंत्रण भी देती हूँ और मेरी शुभ भावनाएं भी हैं कि आप अवश्य ही 10 दिन इस मुरली को नियमित सुन करके खुद ही अपने अनुभव के आधार से कहेंगे कि नहीं, ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी, न केवल उपयोगी है परंतु बहुत आवश्यक है। तो आप इस अलौकिक जीवन में, इस अलौकिक पथ पर खूब खूब आगे बढ़े। डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर अथवा नहीं भी है जीवन में तो सदा सुख, शांति और समृद्धि की अनुभूति करते हुए जो आपने ये प्रसाद यहाँ से पाया है, इस प्रसाद को दूसरे लोगों को बांटने की सेवा में लगाते हुए आगे बढ़ते रहें, उड़ते रहें। इन्हीं दिल की शुभ भावनाओं के साथ खूब खूब आप सबको मुबारक मुबारक, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ओम शांति।
बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी कर रहे हैं। पर क्या करना है, जब आप खड़े होंगे जलाने के बाद तो एक दृश्य आपको लाना है। पूरा मौन रहेंगे अभी और यज्ञ चलेगा तब भी ओम की ध्वनि चलेगी, तब भी मौन रहेंगे। पर एक दृश्य आपको लाना है, जब वो आप गीत गाएंगे, केवल गीत नहीं गाना कि हम होंगे कामयाब, ऐसा दृश्य कि बाबा के वरदानों का हाथ आप सबके सिर पर है और बाबा से वो रंग बिरंगी शक्तियां हमारे भीतर समा रही है और बाबा हमको शक्ति दे रहा है, इसलिए हमारे दिल से निकल रहा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसे दृश्य में गाना है। पर उस गीत के पहले हम आप सबसे एक प्रतिज्ञा कराएंगे, तो वो प्रतिज्ञा जब मोमबत्ती जल जाएगी तब कराएंगे। अब तब तक गीत सुन लो आप। सभी अब हम सभी गीत गाएंगे मिलकर। और देखो दीदी के हाथ में बाबा का झंडा है कि ये बाबा का मैसेज जन जन तक हर आत्मा तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर। तो अब सभी आप अपनी अपनी मोमबत्ती ऊंची करें और विजन बनाएं दृश्य की, बाबा के वरदानों का हाथ आप सबके सिर पर है और बाबा से शक्तियां बरस रही हैं। अब जो हम प्रतिज्ञा कराएं आप करें। आज हम एकता दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, आप सब प्रतिज्ञा करें कि हम सब आत्माएं, बोले हमारे साथ, उस एक परम पिता की संतान है, आपस में भाई भाई है। आज हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम सदा खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुशी बांटेंगे, न स्वयं डिस्टर्ब होंगे न दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखेंगे और शुभ कामना के साथ सहयोग देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा की श्रीमत पर चल के अपने जीवन को दिव्य महान बनाएंगे। ओम शांति। अब गीत बजेगा और केवल हम लोग नहीं गाएंगे, आप सबको गाना है ये गीत, और इतना दिल से उमंग से कि बाबा तक ये आवाज पहुंचे, सबकी आवाज आनी चाहिए और वही विजन कि बाबा के वरदानों का हाथ। हाँ भाई चालू कर दो। जोर से सबकी आवाज आनी चाहिए, एक एक की।
होगी शांति दारो, होगी शांति दारो, होगी शांति दारो, एक दिन हो विश्वास की शांति धारो, और एक दिन होगी शांति धारो, होगी शांति धारो, होगी शांति धारो, एक दिन हो बने विश्वास, पूरा है विश्वास की शांति धारो, और एक दिन।
दो ढाई हजार भाई बहने, इतनी आवाज आनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे गा रहे हैं, ऐसे सुस्ती से नहीं, शक्ति से। सब दिल से गाओ, प्यार से।
हम चलेंगे साथ साथ हाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओहो मन में विश्वास पूरा है विश्वास, चलेंगे साथ साथ एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ हाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओ मन में विश्वास पूरा है विश्वास, चलेंगे साथ साथ एक दिन।
Thank you. सभी मौन में रहेंगे और ओम की ध्वनि यहाँ चलेगी और जिस जिसको भी जो भी कमजोरी आदि छोड़नी है आप सब एक कागज पर लिखकर यहाँ डाल लें। ओम शांति। जब तक आप सोच लें कि आपको आज क्या छोड़ना है और ये पत्र बॉक्स है इसके लेटर्स हम सारे इसमें स्वाह कर देंगे लास्ट में। जब तक यज्ञ की तैयारी हो रही एक बात पूछें कि पूरे 11 दिन तक जिन्होंने चार्ट सिंसियरली भरा, एकाध दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, परसेंटेज कैसा भी रहा वो भी कोई बात नहीं, पर जिन्होंने 8-9 दिन पूरा चार्ट भरा ईमानदारी से वो हाथ उठाओ। अच्छा बहुत है यहाँ बेताली बजाओ इन सबके लिए जोरदार। दूसरा पूरे ही 10 दिन जिसने टीवी नहीं देखा वो हाथ उठा दो। अच्छा ये भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश भाई इनके लिए भी जोरदार तालियां। जिन्होंने पूरे 11 दिन शिविर किया वो हाथ उठाओ। अरे साहब वेरी गुड बहुत बढ़िया। अच्छा